तो प्रश्न तो आगे हैं और एक प्रश्न जो प्रश्न नहीं है अभी, लेकिन बात हुई थी तो कई लोगों के मन में प्रश्न होता है ये, तो आई जस्ट टच अप ऑन इट ब्रीफली। और वो प्रश्न है कि अगर पाकिस्तान और भारत एक होते, मतलब पाकिस्तान होता ही नहीं, तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो साथ में होती, कैसे हैंडल होती। तो अब ये देखिए, इसमें दो भाई हैं, घर में रह रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं, कॉमन लाइफ है, लेकिन उनकी कॉमन लाइफ से वो जुड़े हैं। तो समस्या कब होती है, जब पड़ोसी आके कहता है कि नहीं नहीं तुम आ जाओ मेरे साथ, मैं इसको काम तमाम कर दूंगा। तो ये जो पार्टीशन होता है ना, ये मानसिकता को पूरी तरह बदल देता है। पाकिस्तान का राष्ट्र का निर्माण ही इसी मानसिकता पर हुआ। दूसरा, एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के आधार पे, उसके कारण जो फंडामेंटलिज्म है बहुत अधिक बढ़ा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप राइटिंग्स में जाएंगे कुरान की, हदीत की, जितनी मुझे मालूम है, पढ़ी भी है मैंने थोड़ी बहुत, तो गज़वाए हिंद एक बड़े पासिंग रेफरेंस आता है। वो भी किस कंटेक्स्ट में आता है, वो एक कंटेक्स्ट में आता है जहां वेस्टर्न आर्मीज हैं और उधर से आर्मीज हैं, उनको आपको लड़ना है, उसका कंटेक्स्ट बिल्कुल अलग है। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ तो ये गज़वाए हिंद बहुत एक प्रोमिनेंट रूप में एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए, फिर साथ में जो वेस्टर्न पावर्स हैं जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उन्होंने अब यूज करना शुरू किया। पाकिस्तान तो एक वासल स्टेट बन गया ना, उसके पहले। अब बिकॉज पाकिस्तान का अस्तित्व इस पर निर्भर करता है कि वो भारत को कैसे नीचे करे या हटाए, तो उसने हिंदुस्तान के मुस्लिम्स को फीड करना शुरू किया है। हम सब जानते हैं, सारे अभी देखिए मदरसे भी बंद किए योगी जी ने, कहीं ये उनके खुद के कल्चर में नहीं है, इट इज नॉट देयर। आप सऊदी अरेबिया कहीं जाए, ये क्रिएट की गई सारी चीज, क्योंकि डिवीजन हुआ। अगर डिवीजन नहीं होता तो आप ये चीज किस लिए क्रिएट करते। देर इज नो गज़वाए हिंद, इट हैज कम सब्सिक्वेंटली। वो एक आइडियोलॉजी फीड कर दी गई। और वो आइडियोलॉजी क्यों स्वीकार की गई बाय एन एवरेज पाकिस्तानी, क्योंकि मूर्ख, नंबर वन, पैसे, अमेरिका के डॉलर, चीन का पैसा, तो वो आइडियोलॉजी फीड कर दी गई। और वही भारतवर्ष में भी मूर्खतापूर्ण। लेकिन अगर साथ में रहते तो धीरे धीरे सनातन धर्म में और हिंदुओं में वो शक्ति है कि उसको एब्जॉर्ब कर लेते विद इन इन हाउस। इन हाउस चीजों को सेटल करना इजियर होता है देन अगर वो चीज, अब हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं ना, समझिए एक एक हिंदू मुस्लिम है, रोल चेंज होते हैं, लेकिन घर में है, कॉमन प्रॉब्लम होती है, कॉमन समस्याएं हैं, आप साथ साथ लड़ते हो। लेकिन कोर्ट में जब चले जाते हैं तो ये चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो प्रॉब्लम होती हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, लेकिन उसका श्री अरविंद ने सॉल्यूशन बताए हुए हैं बंगला राइटिंग्स में, हर जगह बताए हुए हैं कि एक कॉमन भाव की मां हमारी कॉमन है। ये चीज पहले थी, ये फीड की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। उन्होंने तीन प्रकार के डिवाइड किए, एक आर्य द्रविड डिवाइड किया उन्होंने, क्योंकि वो जितना वीकेंड करेंगे इंडिया को, एक तो उनकी प्रवृत्ति वो इसी तरह से उन्होंने गवर्नेंस की। दूसरा हिंदू मुस्लिम डिवाइड, बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ था उस समय, क्या बंगाली लोग को ये प्रॉब्लम थी कि भाई हम हिंदू मुस्लिम हैं, ब्रिटिशर्स ने किया था, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। और तीसरा उन्होंने जो डिवाइड किया, एक किया उन्होंने ऊपर नीचे, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, जो हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली आर्यन द्रविड़ियन के नाम से, दूसरा हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया, और तीसरा उन्होंने डिवाइड किया सिख का जो ये तख्त बनाया, सिख अकाल तख्त, सिख एज ए सेपरेट नेशन का जो आइडिया है, ये भी ब्रिटिशर्स की देन है। क्या गुरु नानक जी ने कहा था कि हमको एक अलग राष्ट्र चाहिए? गुरु गोविंद सिंह जी और रणजीत सिंह जो इतने महान, इन्होंने भारतवर्ष की को बचाने के लिए किसको किसको नहीं मारा, ये आइडिया कहां से आया एसजीपीसी का? ब्रिटिशर्स की देन है। और किन लोगों ने पकड़ा इसको, जो एम्बिशियस थे? सेम थिंग हैपेंड विद द टू नेशन थ्योरी, किन्होंने पकड़ा? जिन्ना कोई मुसलमान इस समय, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, पावर एम्बिशन, हिंदुओं ने क्यों स्वीकार किया भारतवर्ष के पावर एम्बिशन। तो ये एम्बिशन का जो इतना भयानक प्ले हुआ है, इसके कारण ये सारी प्रॉब्लम हुई। नहीं तो पीपल हैड लर्न टू लिव और दे वुड हैव लिव्ड वेरी ब्यूटिफुली। ऐसा नहीं है, थोड़ी समस्याएं होती, छोटी मोटी होती है, घर में उसको हैंडल किया जाता है। और सनातन धर्म के अंदर वो स्ट्रेंथ भी है और वाइडनेस भी है, दोनों चीजें चाहिए। केवल वाइडनेस नहीं, स्ट्रेंथ भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम। अब ये सारी मानसिकता में आ गया, गजबाए हिंद, बच्चे पैदा करो, ये करो वो करो, मदरसों को प्रोलिफरेट करो जहां हम उसको जिहाद की शिक्षा देंगे। देयर वाज नो जिहाद। अब भगवान का प्लान कैसे ऑपरेट कर रहा है इसको चेंज करने के लिए। अब रूट में जा रहे हैं, अरब से कंट्री से बताया जा रहा है भाई तुम हो कौन। पहले तो वो अस्वीकार कर रहे हैं, यू आर नोबडी। अब देखिए अब कैसे प्लान चेंज हो रहा है भगवान का। अरब में अब जो भारत और इसके जो मुस्लिम हैं पाकिस्तान के, दे आर ट्रीटेड एज सेकेंड रेट, मतलब दे आर नॉट इवन टेकन एज मुस्लिम्स। वो तो कहते ये तो एवं ही हैं, इनको हम नहीं मानते। हो गया, दे अंडरस्टैंड दिस। और ये मैंने खुद भी अनुभव किया है, आप जाओ दुबई, अब वेन यू मीट यू रियलाइज कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, क्योंकि वो तो पैसा और अपने दुनिया में रहते हैं। दूसरा, अरब के अंदर वो जो हार्डकोर इस्लाम है वो टूट रहा है। एक सिख को बस दिमाग में आ गया कि नहीं, लड़कियां रंगीन कपड़ा पहन सकती हैं, चला सकती हैं, हिजाब जरूरी नहीं है, शुरू हो गया ना। अब देखिए कितनी समस्या हो रही है, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो गया वहां। अब वहां आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो गया तो आप किस आधार पर पकड़ोगे? आपने पकड़ा भी हुआ है पॉलिटिकल रीजन से, जो आने वाली जनरेशन है वो पूछेंगी, बोलेंगी नहीं जहां ये ओरिजिन है वहां तो ये है ही नहीं। तीसरी प्रॉब्लम हुई आइडेंटिटी क्राइसिस की, क्योंकि एक मुस्लिम को ये नहीं पता कि मैं इंडिया को बिलोंग करता हूं या मैं अरब कंट्री को। वो सॉइल का है लेकिन वो मन उसका वहां जुड़ा हुआ है सेमिटिक रिलीजन की। तो अब ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है रूट से। अबू धाबी में मंदिर खुल गया, अब आप क्या तोड़ोगे? तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये सारी संकेत दे रही हैं कि एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक आत्ममंथन प्रारंभ हो गया है। और इसीलिए आज की तारीख में आप देखें तो देर आर फ्यू मिलियन मुस्लिम्स हु हैव बिकम एक्स मुस्लिम्स। साथ में एजुकेशन है, डेवलपमेंट है। अब जम्मू कश्मीर के मुस्लिम को क्या प्रॉब्लम हो रही है? कह रहे हैं देखो इस पार तो लोग ग्रो कर रहे हैं, हमको वंचित क्यों? आप कब तक रिलीजन की अफीम पिलाओगे उनको? वो तो उनको रोटी कपड़ा ये भी चाहिए ना, एक एवरेज मुस्लिम को। मुस्लिम हो या हिंदू, वो एक मनुष्य की आवश्यकताएं तो सेम है। तो वो देख रहा है कि भाई ये समस्या हो रही है और धीरे धीरे ये भी ज्ञान उनके अंदर आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इसके कारण जो नई जनरेशन है मुसलमानों की, वो प्रश्न कर रही है कि ये जो लिखा हुआ है कुरान में, आउटडेटेड चीजें लिखी है, तो ये कैसे ट्रू हो सकती हैं? देयर आर मेनी मुस्लिम जो नाम उनका मुसलमान है लेकिन वो, क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते। इस्लाम में ये कठोर नियम बना दिए गए हैं कि अगर आप चेंज करोगे, कन्वर्ट कर सकते हो इस्लाम में, लेकिन इस्लाम से अगर बाहर जाओगे तो यू हैव टू बी, यू आर ए काफिर, और उसकी क्या सजा होगी ये एवरीबडी नोस। तो वो नहीं कन्वर्ट होते बाहर से, लेकिन दे हैव बिकम एक्स मुस्लिम्स, वो नहीं मानते इस विचारधारा को। कईयों ने लेफ्टिस्ट विचारधारा पकड़ी उस समय, भारतवर्ष में कई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर भी अगर जहां चॉइस आती थी हिंदू मुस्लिम में तो वो मुस्लिम को चुनते थे, पर विचारधारा लेफ्टिस्ट थी, क्योंकि लेफ्ट ने मुस्लिम्स के साथ एक एलियंस किया हुआ है, वो एक दो असरों का पंजा। पर ये अब धीरे धीरे बाई शियर ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस इट इज गोइंग टू गो अवे। और पूरा जो समीकरण बन रहे हैं, न्यू जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ रहे हैं, पर अगर वो साथ रहते तो ये चीजें नहीं होती, कठिनाई होती। पर कठिनाई तो होती, लेकिन ये जो हुआ है ये बड़ा भयानक हुआ है। टेररिज्म नहीं होता फॉर एग्जाम्पल। अब गृह युद्ध तो नहीं करेंगे ना, आपको पता है गृह युद्ध में मेरा भी विनाश होगा, लेकिन टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये नहीं होते। बहुत कुछ है जो नहीं आता, ये हवाला फंडिंग, ड्रग्स रैकेट, ये सब नहीं होता। अंदर में गृह युद्ध के लिए आप कितना फीड करोगे किसी को? सो खैर, नहीं सुना, भगवान का तो प्लान अल्टीमेटली हो गई सही। उसमें क्या है, क्योंकि ये यूरोप को लेसन सीखना अच्छा है, एक्सपेंड करें। ये इनका जो लिबरल आइडियाज का जो भूत है जिसको वो समझते नहीं है, ट्रू लिबर्टी इज वॉट, तो वो एक्सपेंड कर रहे हैं जहां जहां इंग्लैंड में और बेल्जियम में, डेनमार्क, लेकिन वहां भी अभी ये जागृति आ रही है। फ्रांस ने तो बुला करके लाया था अल्जीरिया से, बुला के लाया था फ्रांस में, तो धीरे धीरे वो जगाने का काम कर रहे हैं कि सांप तो हैं, अब कब तक, कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो दे आर बिगनिंग टू रियलाइज, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है उसको भी चेंज होना है। डेनमार्क में उन्होंने नियम बना दिया, वी आर नॉट टेकिंग एनी मुस्लिम्स। इटली में हो गया और कई जगहों पे ये चीज आ रही है। तो ये धीरे धीरे ये होगा, अटैक होंगे तो लोग रियलाइज करेंगे। हमास का क्या हुआ, जो इसराइल ने सहा, भारतवर्ष ने तो इसको 700 वर्षों से यही चीज देखी है। सो स्लोली पीपल आर रियलाइजिंग, और इस्लामिक वर्ल्ड तो कोलैप्स करेगा। और एक बड़ी भूल कर रहे हैं ये बहुत सारे बच्चे पैदा करके, क्यों, आप देखिए आपकी जेनेटिक जो कैपेसिटी है ना वो कम होती चली जाएगी। आप जितने बच्चे पैदा करोगे आपकी मेधा शक्ति, आपकी बाकी शक्तियां क्षीण होती जाएगी। प्रकृति में रैबिट्स के बहुत बच्चे होते हैं, सिंह बहुत नहीं पैदा करता है। तो ये वो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं। आप 100 बच्चे पैदा कर दोगे अगर, तो आप इन टर्म्स ऑफ योर कैपेसिटी आप इतने कमजोर हो जाओगे, और खासकर जब आप एक क्लोज्ड उसमें कर रहे हैं, इतने कमजोर हो जाओगे कि वो दो जो होंगे, यही मतलब था ना कि एक एक सिख 1.25 लाख, उसके सामने खड़े नहीं रह पाओगे। और ये हो रही है, दे बिकमिंग वेरी वीक। आप इनके फौजियों को देखो, कितनी स्टोरी, दे आर रनिंग अवे, बिकॉज आप जितने बच्चे पैदा करेंगे उतनी आप कमजोर होते जाओगे। तो ये तो खुद ही अपने विनाश की ओर जा रहे हैं। प्रकृति विल फाइंड इट्स वे, होपफुली बुद्धि आ जाए जो भी है। यूरोप के बारे में जिसकी बात हम लोगों ने की थी पहले दिन, इंग्लैंड के बारे में प्रेडिक्शन है कि वो डूब जाएगा पानी में। हाँ, ये प्रेडिक्शन बड़ी पुरानी है, माँ ने एक बार कहा कि इट इज पॉसिबल। तो वो तो है, सारे ग्लोबल पैटर्न, वेदर चेंज होंगे, श्रिंक कर रहा है, डूब सकता है। वैसे ही वहां पे अब आयरिश, ये तो खुद को मानते हैं अलग है, हम लोग आयरलैंड को पार्ट मानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा, ये सारी चीजें अब एक्सपोज हो रही हैं। तो ये बहुत उथल पुथल हो रही है। भगवान ठीक चला रहे हैं, अफकोर्स ठीक चला रहे हैं, हम लोग कौन होते हैं जजमेंट पास करने वाले, लेकिन जिस तीव्रता से चीजें बदल रही हैं, आने वाले 50 वर्षों में बहुत कुछ जो अभी है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा, हिस्ट्री बुक में रह जाएगा पाकिस्तान। मैनी सच थिंग्स विल हैपन, मैनी नेशंस विल गो अवे, क्योंकि वो राष्ट्र है ही नहीं, उस स्पिरिचुअल ट्रूथ से सपोर्टेड नहीं है। हाँ, हाँ, वो ये अभी एक मेयर उस पोजीशन में आया है, ऐसे तो बहुत आए गए होते हैं, आए राम गए राम, वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। अच्छा है ना, वो एक्सपोज कर देते हैं इस ट्रूथ को, जिस ये क्या कर रहे हैं ये लोग। ओसामा बिन लादन देखो, उसने उस सत्य को उघाड़ दिया जिसको सब छिपा रहे थे, तो उस मेयर ने भी इस चीज को बता दिया जिसको, नहीं, सब अच्छा, कोई समस्या नहीं है। अब वो फन उठा के खड़ा हो गया आपके पार्लियामेंट में, तो अब यू आर कंपेल्ड टू रिकॉग्नाइज जो आप छिपा रहे थे। कौन छिपा रहा था? लेफ्ट लिबरल छिपा रहे थे, क्योंकि वो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ एलियंस करके मुस्लिम्स को भी मूर्ख बना के, बेसिकली दे हैव देयर ओन एजेंडा, उसमें आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, उनका अपना एजेंडा है। पर अब ये एक्सपोज हो गया, तो ये है, बहुत ही विशाल विषय है, सम अदर टाइम। यस यस, अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जिस पर आप लीस्ट भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो पूरा स्वार्थ केंद्रित राष्ट्र है। उसको जरूरत पड़ेगी तो जिसके साथ जरूरत पड़ेगी उसे ब्याह रचा लेगा। वर्ल्ड वॉर तक फिर भी ठीक था वो भी, क्योंकि उसके ऊपर अटैक हुआ था, पर्ल हार्बर हो गया, भगवान की लीला है। कोरियन वॉर तक उसका एक रोल था, उसके बाद जो रोल आए हैं, किसी से दोस्ती कर लेगा, किसी से तोड़ देगा। ऑफ कोर्स मुस्लिम वर्ल्ड की इनकी अभी भी पैसा आ रहा है, कितना गुप्त रूप से इनका पैसा आ रहा है, क्यों इनका पैसा आ रहा है, इनकी समस्या क्या है, क्यों सपोर्ट करें उनको, मुस्लिम वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। उनको समस्या है कि भाई वी वांट टू बी नंबर वन, तो इनके मार्ग में कौन है, दो रोड़े खड़े हैं, एक है चीन और दूसरा है भारत। तो जब चीन से झगड़ा करना होता है, चीन को नीचे, तो ये भारत को दिखाते हैं, कुछ एक कंसेशन देते हैं। भारत को जब न्यूट्रलाइज करना है तो वो चीन के पास नहीं जाते हैं, उनको पता है चीन को हम सशक्त, दे हैव ट्राइड दैट, तो वो इस्लामिक वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं। इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जो अमेरिका का संबंध है वो बहुत विचित्र है, इसके अगर इतिहास में जाएं तो वो मिडिल ईस्ट में अपने पांव जमाना चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने शिया ईरान को चुना। भगवान की लीला देखिए, क्योंकि सुन्नी से थोड़ा वो डर लगता था उनको, तो इन्होंने शिया ईरान को चुना। ईरान में रिवॉल्यूशन आया, नाम के शिया रह गए, गवर्नेंस सुन्नी हो गई, हार्डकोर हो गई। तो इन्होंने कहा अब हम क्या करें, परेशान हो गए, इनको पांव तो जमाने, तो इन्होंने सऊदी अरेबिया से दोस्ती बढ़ाई, उस समय दोस्ती बढ़ाई और खरीदा उनको, बहुत बुरी तरह खरीदा। शेख है उनको, क्या है, कोई पैसे दे रहा है, जहाज आएगा यह टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तेल हमारा है, टेक्नोलॉजी तुम्हारी, पैसे हम लेंगे, तुम भी लोगे। पेट्रो इकोनॉमी आई, डॉलर आया, डॉलर किस तरह से आया कि भाई जितने ट्रांजेक्शन होंगे डॉलर के हिसाब से होंगे। तो इन्होंने सऊदी अरब वर्ल्ड में अपना पांव जमाया, ईरान को इन्होंने छोड़ दिया, ईरान ने भी इनको छोड़ दिया, इन्होंने भी ईरान को छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने एक बड़ी भयंकर भूल की, इराक पे अटैक करके। अब जैसे ही इन्होंने किया इराक पे अटैक और जो हुआ और अफगानिस्तान में जो हुआ, अब क्या हुआ है ना, इस्लामिक वर्ल्ड का इनके ऊपर से विश्वास उठ गया है। अब ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सऊदी अरेबिया किस तरफ मुड़ रहा है, भारत की ओर। वो कह रहे हैं वी वांट ए स्टेबल फ्रेंडशिप, स्टेबल पार्टनर, टेक्नोलॉजी यहां से भी अब हमको मिल जाएगी। तो अब इनकी प्रॉब्लम छटपट आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो होल्ड था मिडिल ईस्ट पर वो खत्म हो रहा है। दूसरा, इन्होंने ज्यूज को सशक्त किया, इजरायली स्टेट को, एज ए काउंटर, अब उसमें भी इनको समस्या आ रही है। तो नाउ दे आर इन ए वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन, उनका पांव उखड़ गया है मिडिल ईस्ट से, ये कर रहे थे अब तक, करना चाहते हैं, तो अब ये क्लैंडेस्टाइनली कर रहे हैं, ग्रुप्स को कर रहे हैं जो इनके काम में सहायक होंगे। पहले तो वो राष्ट्र को कर रहे थे, पाकिस्तान को, पूरे राष्ट्र को सपोर्ट कर रहे थे, अब ये ISI को पैसा देते हैं, बैकडोर एंट्री देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये तभी से, तो ये चीजें, भगवान का यही तो तरीका है। अभी तक आप कह रहे थे कि कश्मीर को क्या कह रहे थे, फ्रीडम फाइटर्स, टेररिस्ट वर्ड नहीं था इनके डिक्शनरी में, 9/11 के बाद इन्होंने यूज करना शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप आया, जो भी है अच्छा बुरा, उसने तो कहा भाई ये तो टेररिस्ट हैं, ये बदमाश हैं। तो भगवान, ये जो बात हो रही थी, फॉल्सहुड निकल के बाहर आ रहा है, ये ट्रुथ का एक्शन है, और इसलिए बहुत कुछ अस्त व्यस्त होगा। आई यूज ए वर्ड फॉर इट, डिवाइन कंफ्यूजन सब जगह हो रहा है। यूक्रेन का वार क्लियर कट उनका अपना एजेंडा, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है अमेरिका को, यूरोप समझ रहा है, कई चीजें हैं। अब वो कोल्ड वार की जो उनकी, अब यूरोप इस बात को समझ रहा है कि भैया तुम्हारी लड़ाई में हम क्यों बीच में आ गए, दे रियलाइजिंग इट। तो ये सत्य का जो एक्शन है फॉल्सहुड के ऊपर, अब वो अनकवर हो रहा है, जितना अनकवर हो रहा है उतना समीकरण बदलते चले जा रहे हैं। तो इट्स ए प्रोसेस, इट मे टेक एज आई सेड अनदर 50 years, मे बी लेस। रशिया वीक नहीं होगा, रशिया बड़ा इंटरेस्टिंग नेशन है, मैं गया हूं कई बार। रशिया की इकोनॉमी इंटरनली रेगुलेटेड है, वो किसी चीज के लिए टेक्निकली बाहर डिपेंडेंट नहीं है। तो वीक कितना भी आप कर दो, उसके अपने संसाधन इतने हैं। और फिर इट हैड हेल्प्ड इंडिया, इंडिया इज स्टैंड बाय, ऑलवेज देयर विल बी नेशंस व्हिच विल स्टैंड। अब कौन अमेरिका के साथ खड़ा होगा, यूक्रेन एवरीबडी नोज इट्स अमेरिका, तो ये रशिया वीक नहीं होगा, ये इसकी बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। रशिया की इकोनॉमी ऐसे इंटरनली रेगुलर, आपको उसमें दिखेगा रूबल और डॉलर में, हु इज बॉदर्ड अबाउट इट। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको एक बताता हूँ, ये इतने इनोवेटिव है रशियंस, मैकडोनल्ड्स ने पूरा विड्रॉ कर लिया, तो रशियंस ने पता ही क्या किया, कुछ नहीं हटाया, रशियंस अब उसको चला रहे। What difference does it make? They are very smart and very innovative. तभी तो चेस में और माने का है, they have a mystic mind. वो चीजों के बड़े unusual solution ढूंढते हैं। एक last is उसमें कि इसमें joke भी है कि space में Americans की भाई हम क्या बनाएं, क्योंकि ink flow नहीं करेगी। आप कैसे लिखोगे अगर कुछ लिखना है? Russians ने ball pen इजाद कर लिया, पेंसिल, बिकॉज दे आर लाइक दैट, बड़े इनोवेटिव हैं, दे विल फाइंड ए वे। आप नहीं कर सकते, ये नहीं कि पुतिन अच्छा है बुरा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस समय अच्छे बुरे की बात ही करना व्यर्थ है, क्योंकि ये जो चल रहा है ना अभी शिफ्ट, ट्रेमेंडस शिफ्ट चल रहा है, इसमें बस भगवान अपना प्रयोजन अब सिद्ध कर रहे हैं, अच्छा बुरा कंसेप्ट हैज गॉन। रशियंस बड़े, क्योंकि उनके पास, उनके अंदर एक आर्यन सभ्यता का बीज है, ईरान में भी है, वेस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में भी है, इंडिया से गया हुआ है, उनकी भाषा में भी है, उनकी समझ में भी है, लेकिन बाद में क्रिश्चियनिटी आई और ये जार आए तो वो चला गया, लेकिन वो बीज है उनके अंदर, तो वो बड़े मिस्टिक हैं, वो मिस्टिक ट्रुथ्स को बड़े आसानी से समझते हैं। मेरा अपना अनुभव रहा है, कई बार गया हूँ रशिया में, टॉक्स हुई हैं, रशियन में ट्रांसलेट करनी होती है, वो ऐसे पकड़ते हैं सरेंडर, फेथ, भक्ति, दे यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट गेट इट। अमेरिका में जब समझाइए वो दिमाग के अंदर घूम रहा है, फट से पकड़ते हैं, कभी आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, तो एशियन ना, एशिया की अपनी खूबी है, शेरविन ने कहा ना राइज ऑफ एशिया, रशिया में ही बिल्कुल, हालांकि कम्युनिज्म आ गया था तो क्लैंडेस्टाइनली हुई थी, लेकिन वो रशिया में ही सबसे पहले जो ट्रांसलेट होकर के प्रचलित हुआ। हाँ गया हूँ मैं वहाँ पे, जहाँ ये सारे लोग जो बना बुक स्टोर और कैसे छिप छिप के ले जाते थे उस समय, क्योंकि तब तक ये कम्युनिज्म आ गया था, जार को ओवरथ्रो कर दिया था इन्होंने, तो कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो भी आप कहें, सोशलिज्म एक प्रकार का, तो उसमें रिलीजन को वो डिस्करेज करते थे, डिस्करेज किया बहुत स्ट्रांगली। आज वहाँ हरे कृष्णा मूवमेंट है, मेरी अपनी एक जब मैं गया, मैं कविता और दो और लोग आश्रम के गए, तो इन्होंने दो और जो आश्रम के थे उनको रोक लिया, क्योंकि वो जॉबलेस है, मतलब आश्रमाइट है, और मैं और कविता पार हो गए, तो पूछने लगे वो कि हमने कहा उनको क्यों, उनको अलग ले गई पुलिस, हम बड़े परेशान, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया, तो नो नो यू वेट अगेन आई आस्क देम क्या हो गया, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। तो थोड़ी देर बाद एक उनका एक ऑफिसर आया और मुझसे पूछने लगा कौन है आप, तो मैंने बताया, बोला वो जो दो लोग हैं, मैंने कहा हाँ मेरे मित्र हैं, तो कहा आप क्यों लाए हैं, तो मैंने कहा मेरे मित्र हैं, मुझे थोड़ा लगा मेरे मित्र हैं, तो कहते नहीं पर उनके खर्चा कौन करेगा, मैंने कहा मैं करूँगा, तो पैसे वैसे उन्होंने देखे, फिर उन्होंने कहा, फिर पूछा मित्रों को आप क्यों लाए, तो मुझे थोड़ा सा क्योंकि रशियंस का माइंड पता है, मैंने कहा वी बिलीव इन ब्रदरहुड, जोर दे के बोला वी बिलीव इन ब्रदरहुड, कि तुम ब्रदरहुड की बात करते हो, हम लाए तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो एक दूसरे को देखने लगे, फिर उन्होंने एक शब्द पूछा मुझसे जो मुझे समझ नहीं आया, ये भगवान की लीला थी, तो मैंने कहा नो, मतलब आई डिंट अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं वो, तो वो चले गए, कुछ देर बाद वो लोग आ गए, उनसे मैंने पूछा तुम लोगों की क्या अवस्था थी, बोले हम तो माँ को बुला रहे थे, मैंने कहा डिपोर्ट कर देते, तो बोली जो माँ चाहती है, ये आश्रम हाइट का हाल है। वो बड़े मस्त थे, हम यहाँ पर परेशान हो रहे थे, तो खैर आए वो, तो बाद में पता चला वो क्या पूछ रहे थे, वो मुझसे पूछे कृष्ण कृष्ण, तो मुझे समझ ही नहीं आए, तो मैंने कहा आई डोंट नो, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से घबराए हुए, लेकिन थैंक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि लाइटर वेन में बातें हो रही हैं, अब वहां पे वेजिटेरियन खाना मिलता नहीं है। अब ब्रेड हम थोड़ी सी ले गए थे, भुजिया ब्रेड मिल जाएगी ये सोच के, बटर मिल जाएगा, हम ब्रेड बटर भुजिया खाएंगे, केले ले लेंगे, फल ले लेंगे, ये हमने सोच के गए थे कि 7 दिन वील स्पेंड लाइक, मेरी टॉक्स भी थी और जो जाना है वहां पे। अब वहां पे थैंक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस एक शुद्ध वेजिटेरियन राधा कृष्णा नाम का रेस्टोरेंट खुल गया है, और वो जहां मैं रुका था माँ की कृपा है 10 मिनट की वॉक, तो हम तो सुबह शाम वहां जाकर के वहां राजमा पूरी इंडल्जिंग टू हार्ट्स कंटेंट, वहां नॉनवेज मिल ही नहीं रहा है। तो भगवान अपने अपने ढंग से घुस रहे हैं सब जगह, वी शुड नॉट वरी। डार्विन, डार्विन और शेयरविन, डार्विन इवोल्यूशन का केवल बाहरी भाग बता रहे हैं, फिजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं। लेकिन फिजिकल इवोल्यूशन क्यों होता है? तो डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। अब स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल उसको क्या बताया कि भाई मुझे सर्वाइव करना है? इसमें इम्प्लिसिट क्या है? प्रकृति में कोई प्रज्ञा है जो काम कर रही है, और उसमें प्रश्न चिन्ह यह है कि यदि सर्वाइवल ही गोल है तो वायरस में क्या कमी है, अमीबा में क्या कमी है? तो इवोल्यूशन तो ये एक्सप्लेन नहीं करता है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये भी हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हम किसको फिटेस्ट बोलेंगे? ऐसा तो नहीं हुआ कि टाइगर फिटेस्ट है, काफी फिट है, लेकिन डियर मल्टीप्लाई कर रहा है और टाइगर खत्म होता जा रहा है। तो ही ऑल्सो डिन नो, ही ऑब्जर्व द फिजिकल इवोल्यूशन वेरी करेक्टली। अब उसमें जो रिसर्च की मेंडल ने, हेरिडिटी वगैरह, तो उन्होंने उसमें बताया कि म्यूटेशन होते हैं वो एक, पर क्यों होते हैं ये नहीं मालूम, इसका क्या पर्पस है? कोई पर्पस है भी नहीं। डार्विन ने इस ये प्रश्न को नहीं लिया, क्योंकि अब नेचुरल सिलेक्शन बोल के उसने छोड़ दिया, क्योंकि जो वेस्टर्न विज्ञान है उसमें नेचर इज गॉड, नेचर में ही सब हो रहा है, नेचर में कोई प्रज्ञा है ये हम लोगों का कंसेप्ट है, नेचर अपने आप कर रही, क्यों कर रही है ये प्रश्न का औचित्य नहीं है, कर रही है बस, यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस। मतलब इस तरह की चीजें कि कार कैसे बनी है, कैसे चलती, इतना जानना काफी है, क्यों बनी है और उसको ड्राइव कौन करेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो इस प्रश्न को उठाते नहीं है, वाई नहीं उठाते हैं, वो हाउ उठाते हैं। तो इसलिए डार्विन और डार्विन के अनुयायियों ने ये आवश्यक नहीं समझा कि ये प्रश्न उठाया जाए। तो लेमार्क ने इसको लिया, लेमार्क ने इसको एक बड़े सुंदर ढंग से बताया कि वो जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस कैसे होती है, आपकी जो नीड होती है, जिराफ का एग्जाम्पल दिया, ऊपर पत्ते लग रहे थे तो घोड़ों ने, जेवरा ने स्ट्रेच कर करके और गर्दन के अंदर मॉडिफिकेशन आ गया, तो ये सब हुई, बस वहाँ पे बात रुक गई। बहुत उसको अपने ही परिवेश में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा डार्विन को, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इवोल्यूशन में नहीं विश्वास करती, वो क्रिएशनिज्म में करती है। अगर प्रश्न होगा तो आई कैन टेक दैट अप एंड हाउ दे कैन बी रिकनसाइल, बट कि भाई सब चीज़ें एक दिन भगवान ने बना करके धरती पर डाल दी, इवोल्यूशन है नहीं। तो डार्विन की वाइफ ने बात करना बंद कर दिया था उनसे कि भाई तुम कैसे क्रिश्चियन हो? तो मैं क्रिश्चियन ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं वो अपना ऑब्जर्व, ये तो क्रिश्चियन वर्ल्ड में कई जगहों पर हुआ। खैर अल्टीमेटली उसके बाद डार्विन ने भी ज्यादा प्रोब नहीं करी, क्योंकि इसमें उसको इतनी समस्या हो रही थी, ही डिडंट प्रोब, नोबडी टुक इट अप। न्यू डार्विन्स आए, वो अब हेरिडिटी को प्ले करते हैं। श्री अरविंद क्या बता रहे हैं? इवोल्यूशन इज ए फैक्ट, लेकिन इट्स पर्पस इज नॉट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन विद इन। वो इवोल्यूशन की इनर प्रोसेस बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बाहर का जो चेंज आता है वो इनर प्रोसेस के कारण आता है। अब इसमें एक नई चीज आती है कि अगर वो बाहर रैंडमली हो रहा है तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, कब होगी, कब हमारी जीन्स म्यूटेट कर जाएगी, कुछ और बन जाएंगे, वी डोंट नो। लेकिन अगर इनर प्रोसेस है तो क्या है, अगर आपकी कॉन्शियसनेस बदलेगी तो फॉर्म को प्रेशर डालती है चेंज होने के लिए। अगर आपके अंदर अभिप्सा कि मैं दिव्य तत्व को मैनिफेस्ट करूं, अनुभव करूं, लेकिन कॉन्शियसनेस आपका फॉर्म अलाउ नहीं कर रहा है, उसने आपको पिंजड़े में बंद किया है। लेकिन ये कॉन्शियसनेस ग्रो करेगी तो वो फॉर्म के ऊपर प्रेशर डालेगी अंदर से, और जैसे जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, हम लोगों की भी हाथ पांव सारे चेंज होने लगेंगी, ये ब्रेन चेंज होना शुरू होगा। इसलिए श्री अरविंद को पढ़ना चाहिए, बिकॉज वो ब्रेन सेल्स चेंज होते हैं जहां से रूपांतरण प्रारंभ होता है। ये श्री अरविंद ने, माता जी ने लिखा है, इट विल क्रिएट न्यू ब्रेन सेल्स। क्यों? श्री अरविंद को पढ़ने नहीं समझ आ रहा है। तो एक होते जो गिव अप कर देते हैं, कहते हैं समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे, फिर पढ़ते हैं नहीं समझ आता, फिर पढ़ते हैं। अब क्या होता है इस प्रोसेस से, आपके अंदर एक इनर नीड है कि मैं समझूं। तो सबसे पहले कहां पर जा रही है ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं, आंखों से ब्रेन के अंदर जा रही है। अब वो कॉन्शियसनेस की जो नीड है, श्री अरविंद ने चीजों को वहां ला करके रख दिया है कि तुम अपनी गर्दन को थोड़ा तो उचकाओ। तो जब चेतना स्ट्रेन करती है तो ब्रेन की सेल्स चेंज होना प्रारंभ होती है, और वहां, और ये चीज बाय द वे साइंटिफिकली भी कि डेंड्राइट चेंज होते हैं, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो एक बड़ा विषय है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। तो वहां से चेंज प्रारंभ होता है और धीरे 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 वो फैलता है नीचे, इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल्स में, ग्रुप्स में, और फिर कलेक्टिविटी में। तो डार्विन has made observation about the outer side of evolution. Shobindu feels the most important aspect, the inner side of evolution, जो consciousness के अतिक्रमण के कारण जो form बदलता है, और अतिक्रमण इसमें कई hints हैं, nature में मिलते हैं। mud fish एक example है, mud fish एक विचित्र प्राणी है जो ना पानी में रह सकता है ना धरती पर रह सकता है। तो वो mud fish जैसा नाम है, तो वो हल्का सा जैसे मिट्टी, उसमें हल्का सा पानी उसमें रहती है, वो बड़ी, हाँ, छिछला पानी, और छटपटाती है, रेस्टलेस होती है। अब प्रकृति ने ऐसा जीव क्यों बनाया? क्योंकि उसी मड फिश के बाद टैडपोल आता है, ट्रांजिशन है। अब यहां से हम लोगों ने उस सूत्र को पकड़ लिया, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर अभिप्सा तो आ गई है, अब आ गई है। पहले केवल मोक्ष मोक्ष मोक्ष, या ये जीवन जैसा है चलेगा। अब अभिप्सा आ गई है कि वी वांट अ परफेक्ट वर्ल्ड, वी वांट अ डिवाइन वर्ल्ड। ये अभिप्सा अब फैल रही है संक्रमण के द्वारा, और जैसे जैसे ये फैल रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे अंदर होगी या नहीं होगी, यानी उस देह के अंदर। ये अभिप्सा अब अग्नि की तरह फैल रही है, और एक टाइम आएगा जब इस अभिप्सा के कारण बढ़ती हुई अंदर से विस्फोट होगा, और आप देखेंगे कि नई संभावनाएं, नई प्रतिभाएं प्रारंभ हो गई हैं मनुष्यों के अंदर। उदाहरण कोई, यस, जस्ट वॉच दी इंडियन आइडल एंड द डांस शोज। 6 साल के बच्चे, आप, मां ने कहा था इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सुप्रामेंटल कारण, चाइल्ड प्रोडिजीज बढ़ेंगे। ऐसी प्रतिभाएं ब्लाइंड देख पा रहा है, ये तो डेमोन्स्ट्रेट हुआ था। क्यों? क्योंकि ये चेतना अतिक्रमण करना चाह रही है, अब फॉर्म की लिमिट्स हैं, और वो अतिक्रमण करेगी, और धीरे धीरे क्योंकि वो बॉडी अब नहीं कर पा रहा है उसको, तो अंदर अंदर चेंज प्रारंभ हो गया है। इसके भी साइंटिफिक एविडेंसेस आ रहे हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस अपेंडिक्स, ये धीरे धीरे मनुष्य लूज कर रहा है। लड़कियां लंबी हो रही हैं, इसीलिए पहले एयरफोर्स में या पायलट्स में लड़कियों को नहीं लिया जाता था, क्योंकि नाटी होती थी। तो आपके कॉकपिट आप ऐसे नहीं बना सकते हो फ्लेक्सिबल, कार की सीट में तो आप कर लोगे, कॉकपिट डिजाइन में नहीं कर सकते हो कि भैया सीट थोड़ी पीछे कर लो, ऊपर का भी है, लेकिन बिकॉज दे हैव ग्रोन टॉल तो दे डोंट हैव टू चेंज द डिजाइन। ये तो ऑब्जर्व हुआ है, रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं ओलंपिक्स में, आप ऑब्जर्व कर लीजिए, फिजिकल लेवल पर रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। ये सब इसका इंडिकेशन है कि फिजिकल बॉडी पे एक नई चेतना बहुत तेजी से काम कर रही है, और वो उसने बदलना शुरू कर दिया है। जीवन को प्रोलॉन्ग करने की ये भी एक पॉसिबिलिटी मनुष्य के अंदर आ गई है। तो इन पॉसिबिलिटीज के कारण धीरे धीरे अब वो टाइम कब आएगा, उसको कहा जाता है टिपिंग पॉइंट, एक सफिशियंट नंबर जिसके अंदर ये चेतना की अग्नि या चेंज की जो प्यास है वो बढ़ेगी। कुछ नहीं होगा बाहर उस नंबर के अंदर एक समय पर, लेकिन अचानक आप देखेंगे कि इधर उधर आइलेट्स जगह जगह पर अतिक्रमण करने लगेगी वो चेतना, और फॉर्म अडेप्ट होने लगेगा। कई चीजें हम लोगों की बदली हैं, मानव का के इवन उसका फिजिकल ढांचा देखेंगे तो आप देखिए आज से 500 साल पहले ग्लेडिएटर्स वगैरह एक बड़े मस्कुलर ह्यूमन बींग्स, अभी वो चीज बदल गई है। और एक चीज बताइए माने फिजिकल फॉर्म के बारे में, सुन के शायद सुखद या दुखद आश्चर्य हो मुझे नहीं मालूम। माने कहा है फॉर्म विल बिकम मोर एंड मोर एंड्रोगाइनस, टिपिकल लड़की टिपिकल लड़का ये चला जाएगा। कई ऐसी चीजें जिससे लड़की की पहचान होती है, ब्रेस्ट एटसेट्रा, इट विल श्रिंक। आप बोलिए अब ये सुखद हो या दुखद हो आई डोंट नो, परंतु हाँ एबनॉर्मल के द्वार से सुपर नॉर्मल को जाता है ना व्यक्ति, अभी वो एबनॉर्मल लगेगा, खाने की नीड कम हो जाए। खाना की नीड तो मैंने खुद ने देखी है, मेरे मामा जी तो 50-50 पूड़ियां ऐसे खा जाएं खीर के साथ जैसे कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो नॉर्मल चीज थी। आई एम श्योर कई लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा। आज के पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि बच्चा खाता नहीं है, है ना, है कि नहीं है ये ऑब्जर्वेशन? ये तो आप अपने जीवन काल में देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन, ये क्या हो गया खाने को। वो बच्चे जो एक समय में 50-50 पूड़ी खाते थे, लिविंग एग्जाम्पल, मेरे मामा जी एक मामा के साथ, ये तो दूसरे मामा, एक मामा के साथ कंपटीशन हुआ किसकी, मेरी दादी की डेथ में, और कंपटीशन हो रहा है अंदर की, आजा मुन्ना देखें कितनी गुलाब जामुन खाएगा। मैं भी लग गया, 18 तक तो मैंने काउंट रखा, उसके बाद मैंने कहा मामा नहीं खा सकता। उन्होंने 19, 20, 21, 22, माई मॉम केम एंड स्टॉप्ड हिम, ये क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली आज आप बच्चों को एक में भी वो मुश्किल से बस हो गया। क्यों ये चेंज आया है, किसने कहा? इट्स नॉट क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया डायबिटीज, जैसे कोई कोई डायबिटिक मिठाई नहीं छोड़ता है, भ्रम में मत रखिए रहिए।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में
आपका क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, ये जितनी चीजें आ रही है मनुष्य की चेतना को चैलेंज कर रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है, वही चीज जो विज्ञान हमेशा करता है, जब वो एक कोई नई चीज लाता है तो उसके दो परिणाम होते हैं, एक तो व्यक्ति और एक कंफर्ट जोन में जाके उसका दास बन जाता है, और दूसरा जो होता है जो इवोल्यूशन को स्पीड अप करता है, क्योंकि अब नई चीज आ गई, अब आपका माइंड एक नई विक्ट्री की ओर जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी यही होगा कि एक और ये मनुष्य को दास बना देगी, और बड़ा खतरनाक है वो सिनेरियो, टेक्नोलॉजिकल एडवांस, और व्यक्ति अगर उसके इवॉल्व नहीं हुआ साथ में तो वो इसका क्या उपयोग करेगा, आप कल्पना कर सकते हैं। महाभारत के समय यह हो चुका है, अश्वत्थामा के हाथ में ब्रह्मास्त्र थमा दिया आपने। दूसरी ओर कुछ ऐसे होंगे जो इसी चीज के कारण वो उनका आंतरिक इवोल्यूशन, दे विल बिगिन टू सीक फॉर, आजकल जिसकी बात चल रही है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, डिवाइन इंटेलिजेंस। आप खिलौने से खेल रहे हो, मन भर गया, कुछ होंगे जो चैट जीपीटी के हुक हो जाएंगे, ज्यादातर ऐसे होंगे, तो ज्यादातर तो वो खराबी हार ही करता है, तो वो बुद्धि कुंद हो गई आपकी, यू आर नॉट थिंकिंग। परंतु ये खेल कुछ ऐसे होंगे जो शुरू में खेलेंगे इस खिलौने से, अब उनको कुछ नया चाहिए। नया क्या है, आपको साइंटिफिक फील्ड में अब अवेलेबल नहीं है, आएगा कभी आएगा 200 साल बाद उड़ने वाली वो सब, या 50 साल बाद टैक्सी, फ्लाइंग टैक्सी, बट इज द सेम सर्किल। तो फोर्स हो के मनुष्य अपने अंदर में चेतना का अतिक्रमण करेगा। इसका एग्जाम्पल 60s में आया था। 60s में साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण ऐसा सोचा था वेस्टर्न वर्ल्ड ने कि हमने अल्टीमेट क्रिएट कर दिया। तो मानव चेतना ने क्या किया, सावित्री में एक लाइन है, इफ द हार्ट ऑफ मैन रोज नॉट इन रिवोल्ट। तो सब बड़ा व्यवस्थित जगत था, हर चीज टेक्नोलॉजी मशीन, तो ह्यूमन हार्ट ने रिवोल्ट किया। उसने कहा ये फिजिकल वर्ल्ड के अलावा कुछ और भी है, तो कहां चले गए लोग, बीटल्स, पॉल मैकार्टनी, एजुकेशन में रिवोल्ट हुआ, ड्रग्स की ओर चले गए, ऑल्टरनेट एक्सपीरियंसेस में चले गए, क्योंकि दे वर सिक एंड टायर्ड। आप हर चीज चल रही है आपके, आपने बटन दबाया ये हो गया, बटन दबाया वो हो गया, लेकिन वो जो हमने पढ़ा था, देयर इज अ नीड विद इन द सोल ऑफ मैन, द स्प्लेंडर्स ऑफ द सर्फेस नेवर सेट। तो वो कुछ लोगों में एक्सेलरेट कर देगा इवोल्यूशन को, ये कुछ लोग ही हैं जो ध्वजवाहक, बाकी सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ नीचे गिरेंगे।
रोबोट
स्टेज पे लेडी थी उनको टच किया, उस पे काफी पेपर्स पे।
क्या क्या रोबोट ने क्या किया? हाँ वो तो कॉन्शियस, वो एक अलग चीज है विषय की, क्या एआई के टूल्स में रोबो के अंदर कॉन्शियसनेस है कि नहीं है। मेरा मानना है क्योंकि कॉन्शियसनेस सर्वत्र है, और अगर इंस्ट्रूमेंट आप बनाएंगे तो कॉन्शियसनेस यूज कर सकती है। और इसका एक प्रमाण था जब पहला कंप्यूटर बना था और माताजी को दिखाने लाए थे, जो दिखाने लाए थे उन्होंने स्वयं ये बात मुझे बताई है, फ्रैंक माथुर, वो लेके आए थे, 60s की बात है, उन्होंने माताजी को, पहला नहीं पर भारत में आया था पहला कंप्यूटर, तो पहला आया, माताजी के पास ले गए, तो माताजी के पास वो काम ही नहीं कर रहा था, मां स्माइल करें, ये कन्वर्सेशन एजेंडा में है। तो फिर वो माताजी कहती हैं, सी इट वॉन्ट वर्क लाइक दिस, आई वॉज सींग वेदर इट इज रिसेप्टिव टू माई फोर्स और नॉट। और मशीनों के बारे में माने कहा दे कैन बी रिसेप्टिव, वो शुगर मिल की मशीन के बारे में कहा है। तो अब आपने एक मशीन बना दी है, इसको कोई भी कॉन्शियसनेस यूज कर सकती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इवन डायरेक्टली इट कैन स्टार्ट। अब वो कॉन्शियस वैसे नहीं होगी मशीन, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, बट इट कैन बी यूज्ड बाय आसुरिक फोर्सेस। और माँ ये कहती थी कि न्यूक्लियर पाइल्स के बारे में भी उन्होंने कहा है ये बात, और इट रिक्वायर्स एक व्यक्ति की चेतना में घुस जाना जो उसका मिसयूज करेगा। तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शेरविंद ने लाइव डिवाइन में इसका जिक्र किया है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी रैपिडली चली गई है और मनुष्य का आंतरिक विकास नहीं हुआ है उस पर। तो ये प्रेसिंग नेसेसिटी है अब कि जब लोग एआई में जा रहे हैं और उसमें जहां भी जा रहे हैं, लेट्स पुट इट लाइक दैट, हमें SI और DI का डेवलपमेंट करना चाहिए। SI स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, DI डिवाइन इंटेलिजेंस। यू हैव टू हैव, सी अब प्रॉब्लम क्या है ना, टेक्नोलॉजी आ गई है, ब्रह्मास्त्र मार्केट में आ गया है, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं सीखेंगे, प्रॉब्लम ये है। यू हैव टू हैव, क्योंकि AI के बारे में सीखना है बच्चों को, ब्रह्मास्त्र अगर है तो इट इज बेटर कि अर्जुन सीखे ब्रह्मास्त्र और पाशुपति अस्त्र के बारे में, अब ऑप्शन नहीं है। लेकिन मनुष्य को समझना है भारतवर्ष में खासकर कि दिस इज नॉट एनफ, इसके साथ साथ हमारी स्पिरिचुअल और डिवाइन इंटेलिजेंस डेवलप करनी चाहिए। अब आप उसको नहीं हटा सकते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कंप्यूटर नहीं रखेंगे घर में, TV नहीं रखेंगे, यू कैन नॉट डू इट नाउ, यू हैव टू इवॉल्व कि आप कॉन्शियस चॉइस करो कि भाई कौन सा चैनल देखोगे, सौंदर्य बोध को बढ़ा दो ताकि वो उन चैनल्स पर नहीं जाए, ब्लॉक नहीं कर सकते, यही तो फ्रीडम में इवोल्यूशन की प्रॉब्लम है, आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। कितने दिन आप चाइल्ड लॉक लगाओगे, बच्चे आपसे ज्यादा जानते हैं चाइल्ड लॉक, वो खोलेंगे जाएंगे और लॉक कर देंगे, पेरेंट लॉक, आई नो पेरेंट लॉक, आप सोचोगे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। तो उसका इवोल्यूशन इज द वे, इनर इवोल्यूशन, की कौन सी चीज चुननी चाहिए, कौन सी चीज नहीं चुननी चाहिए, क्यों चुननी चाहिए, क्यों नहीं चुननी चाहिए, उसके लिए बहुत फ्रीडम और डिस्कशन की जरूरत है। आई हैव डिस्कस विद चिल्ड्रन, पोर्नोग्राफी पर क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे कहते हैं प्लेजर है, क्यों नहीं, तो ये कि भाई ये तुम्हारी इमोशनल एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, आप किसी से प्रेम नहीं कर पाओगे, आप चीजों को प्लेजर ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहे हो। इवन सेक्सुअलिटी जो एक सुंदर हो सकती है मानवीय स्तर पर, आपने उसको केवल एक प्लेजर का माध्यम बना दिया, तो ये बच्चे समझते हैं। पर आप बोलो नहीं 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 बात मत करो, गंदी चीजें मत देखो, और देखेंगे, आपने कह दिया ना मत देखो, तो अब वेज ऑफ चेंजिंग, मतलब यू हैव टू ग्रो मोर कॉन्शियस, अंत में जो आप कॉन्शियसली चुनते हो वही मैटर करता है। तो अब वो एज आ गई है जब चिल्ड्रन हैव टू चूज कॉन्शियसली, अब उसमें हो सकता है 100 में 2 चुने सही, 98 खत्म हो जाए, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग इवोल्यूशनरी वॉश आउट, यू कांट हेल्प इट। For more, it will use everything because, but more important is spiritual consciousness का evolution. क्योंकि spirituality is a vague term. I'll tell you one thing. अभी spiritual, और अच्छा है इससे वो question भी आ गया आपका. What is spirituality? अगर हम पूछें किसी से, तो आप associate कर सकते हो कि हम ये practice करते हैं. आमतौर पे यही बोलते हैं ना, भाई हम इस फाउंडेशन से जुड़े हैं, इस योग पथ से जुड़े हैं, आप क्या करते हो, स्पिरिचुअल का मतलब हम ये रोज प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं जी, हम 3 घंटे मेडिटेशन करते हैं, श्वास पे कंट्रोल करते हैं, सब नन ऑफ दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज ए मेथड एंड टेक्निक. स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस. अब ये चीज लोग नहीं, क्योंकि आपने, रावण भी था उस तरह से, तो रावण ने बड़ी विकट विकट साधनाएं की थी. तो स्पिरिचुअलिटी प्रारंभ कहां से होती है, आपकी चेंज ऑफ मोटिव एंड एंड्स विद चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस. तो ये सच है कि स्पिरिचुअलिटी शुड यूज एवरीथिंग, बट यहां स्पिरिचुअलिटी के नाम पर कालनेमी भी तो बहुत हैं, समस्या ये है. तो फर्स्ट वी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट एवरीथिंग विच गोज अंडर द नेम ऑफ स्पिरिचुअल. अब स्पिरिचुअल के उसके मूल में जाएं तो व्हाट इज स्पिरिचुअल. तो अगर हिंदी में देखें तो क्या शब्द है, आध्यात्मिक, जो आत्मा सेल्फ, अधि जो उसके ऊपर है, मतलब एक लिटिल सेल्फ में हम जीते हैं, आप ग्रेटर सेल्फ में जब जीने लगोगे तो वो अध्यात्म है. इट कैन बी सेल्फ ऑफ हायर माइंड, सेल्फ ऑफ इल्यूमिन माइंड, सुपरामेंटल सेल्फ एट द हाइएस्ट. स्पिरिचुअलिटी, अभी हम स्पिरिट जो वर्ड आता है, सेल्फ एंड स्पिरिट, सेल्फ इज द आत्मबोध, स्पिरिट उसका एटमॉस्फियर है. जब हम उस सेल्फ के एटमॉस्फियर में जीने लगे, श्वास लेने लगे नेचुरली, जैसे अभी हम ये श्वास लेते हैं, वो हमारा नेचर बन जाए, तब हम कह सकते हैं कि somebody is spiritual. अदरवाइज तो वो नाम है. तो जिस भी तरह से देखें, दोनों में स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आप अपनी सीमाओं के परे चले गए हो. माइंड में जीने की बजाय कम से कम रैशनल माइंड से ऊपर उठकर मिनिमम इल्यूमिंड या इंट्यूटिव माइंड में जीने लगे हो. ऐसे लोग यू कैन काउंट ऑन फिंगर टिप्स. फील गुड फैक्टर ए पार्ट, मेडिटेशन करते हमको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है, बड़ी शांति मिलती है, वो एक अलग चीज है. शांति तो लोगों को चुपचाप बैठ के भी मिल जाती है, बट दैट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी. तो वो जो प्रश्न था तुम्हारा इससे जुड़ा हुआ सूर्य प्रताप का, कि क्या डिफरेंस है, स्पिरिचुअली उठना हुआ है, एसेंट हुआ है कॉन्शियसनेस का. एसेंट का मतलब ये कि जब ध्यानस्थ होके या कर्मयोग के द्वारा या भक्ति योग के द्वारा मनुष्य ने अपनी चेतना की सीमा का अतिक्रमण किया. अब मैं जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअल के नाम पर जो हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं. हुए हैं ऐसे मिस्टिक्स जिन्होंने पथ भी बताया है, पथ से ज्यादा पुराने समय में गुरु थे, शिष्य थे और आश्रम थे. ये पथ मत संप्रदाय बाद में आए हैं. तो अब वो अनुभव करते थे, लेकिन जब जीवन में आते थे तो मन प्राण शरीर उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते रियल लाइफ में, पर वो अनुभव आपके ऊपर बड़ी स्ट्रांग छाप छोड़ता है. आपने कहीं देख लिया, मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं ही मालिक, तू ही मालिक. एक दिन आपने एक्चुअली मालिक को देख लिया, कहा यार मालिक तो वो है. अब चला गया वो मालिक, लेकिन वो जो स्मृति है ना आपको हेल्प करती है कुछ हद तक. आपको पता है यार मालिक है, ये है एक ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी की, लेकिन फिर भी मालिक है, कहीं है, कुछ हद तक आपको हेल्प कर रही है, आपका जीवन फिर भी अपने हिसाब से चल रहा है. थोड़े आप निस्वार्थ बन रहे हो टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि आपको पता चल गया कि ईगो के परे कोई सत्य है. आप दूसरों को हानि नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि एक प्रेम है जिसका स्पर्श आपको मिला. तो स्पिरिचुअलाइजेशन क्या है? स्पिरिचुअलाइजेशन है ये आपके नेचर में अब चेंज आ गया. क्या चेंज आ गया? आपके थॉट कभी अलग ही नहीं होते हैं इस सत्य से, दैट देर इज वन कॉन्शियसनेस विच इज मूविंग दिस एंटायर यूनिवर्स. वो एक क्षण का अनुभव नहीं है, वो आपके मन को उसने चेंज कर दिया. तो वही लाइट आपके माइंड के थ्रू संसार में रेडिएट कर रही है. हार्ट, आप ये नहीं कि केवल मैंने अनुभव किया भगवान की भक्ति, बड़े भजन की इंटेंसिटी में मैंने अनुभव किया, लेकिन वो मन आपका, हृदय आपका ऐसा बदला कि हर किसी के अंदर आपको हरी 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 हरी, ये बड़ा रेयर फिनोमेना है. इस तरह की स्पिरिचुअलाइजेशन बड़ी रेयर हुई है और पार्शियल हुई है. देह के साथ तो बिल्कुल अटेम्प्ट भी नहीं हुई है, जीवन के साथ भी नहीं अटेम्प्ट हुई है. तो ज्यादातर लोग जो ये अटेम्प्ट करते थे वो मोनेस्ट्रीज में या अल्टीमेटली किसी ना किसी प्रकार के आश्रम में चले जाते थे जीवन से, क्योंकि उनको पता था जीवन में हम उतरेंगे तो कंटेमिनेशन होगा. आप सब में भगवान भगवान बोल रहे हो, आपकी वाइफ ने कह दिया आप मूर्ख हैं, अब देखिए आप देखिए भगवान आपका सारा भगवान का नशा उतर गया है ना, आप वहां अप्लाई करिए कि माँ दुर्गा जय माता दी करिए वहां पर। तो लोग क्या करते थे, विड्रॉ करते थे, विवाह नहीं करेंगे, ये सारी चीजें वहां से आई, बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि ये सारी जो चीजें आपको वापस ले आ सकती संसार में। आप रेगुलर जॉब नहीं करेंगे, केवल वो काम करेंगे जो जैसे भगवान की सेवा, मंदिर में काम करेंगे या आश्रम में पर्टिकुलर काम करेंगे, क्योंकि अब अगर आप जीवन में आएंगे संसार में तो फिर वो 10 चीजें हैं। इसलिए श्री अरविंद समता की बात करते हैं, बिना समता के आधार के स्पिरिचुअलिटी इन रियल लाइफ कैनॉट डिसेंड। तो स्पिरिचुअलिटी जब आपके जीवन में जैसे श्वास ले रहे हो बिना किसी प्रयास के, स्वतः स्फूर्त हो जाती है मन में, हृदय में, प्राण में, नेचर हो जाती है आपका, तो उसको स्पिरिचुअलाइजेशन। जैसे बंदर को ट्रेन करना और बंदर को मनुष्य बन जाना, ये अंतर है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। बंदर या कुत्ता, कुत्ते जो होते हैं, देख के मनुष्यों को बिहेव करने, उनको पता चलता है कि मनुष्यों को क्या चाहिए, उनको पता है कि भाई मालिक का वो चाहिए तो आके आपके पाँव के चारों तरफ जाएंगे, बड़ा क्यूट लगेगा, चाटने लगेंगे, पूंछ हिलाएंगे। अब क्या है, उनको पता चल गया है कि यह आदमी किसी से खुश होगा। कुछ कुत्ते हैं जो काम भी कर देंगे आपका, करते हैं, लेकिन कुत्ता मनुष्य नहीं है। अगर वो कुत्ता ट्रांसम्यूट होके उसकी चेतना ऐसी हो जाए कि उसको स्वतः ही सब पता है मालिक के साथ क्या है, और वो वैसा व्यवहार करने लगे, तो वो फिर कुत्ता तो रहा नहीं ना, शरीर शायद श्वान की हो लेकिन वो तो भैरव देव का श्वान बन जाएगा। तो उस प्रकार से चेतना का रूपांतरण, ये स्पिरिचुअल है। और उसके लक्षण होते हैं कुछ, फॉर एग्जाम्पल एम्बिशन नहीं होगा, आप अपनी प्रेज से बहुत ऊपर नहीं समझोगे कि हाँ मेरी प्रेज हो रही है, आप आपकी क्रिटिसिज्म से यू वॉन्ट गो डाउन द डम्स, एम्बिशन आपके अंदर समाप्त हो जाएंगे, उसकी जगह भगवान की सेवा, यही एक लक्ष्य। ये जो चेंज आता है चेतना के अंदर, उसको स्पिरिचुअलाइजेशन कहते हैं। सिमिलरली साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्सपीरियंस किया है क्रिश्चियन मिस्टिक्स ने और भक्ति योगियों ने, और वो एक स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमको गुजरना है, वो तैयार करते हैं फॉर दी अल्टीमेट सुपरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन जो अब तक नहीं हुआ है। साइकिक चेंज हम लोगों को, चेतना को टर्न टूवर्ड द राइट एंड द लाइट, ये ओरिएंट कर देता है। जिसका साइकिक जागृत है वो क्रूड चीजें नहीं कर पाएगा, असंभव हो जाएंगी उसके लिए, क्योंकि उसने उसको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, खत्म हो गया उसके अंदर। वो स्पॉन्टेनियसली ट्रूथ, गुड और ब्यूटी को चुनेगा। और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये जो ओरिएंटेड है टुवर्ड्स लाइट एंड द राइट, इट बिगिंस टू ग्रो इनटू द लाइट एंड द राइट, नेचर बनने लगता है। और सुपरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन उसको पूरा कंप्लीट कर देता है, डिविनाइज कर देता है। इट इज नो मोर द लाइट एंड द राइट, बट ऑल बिकम्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन। एक छोटी सी पोयम याद आ गई, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। पोयम्स पर है तो पढ़ी लेना है थोड़ी बहुत बीच में। ये पोयम बड़ी अद्भुत है, इसको श्री अरविंद ने, छोटी सी पोयम है, और माता जी ने इसको अपनी वाणी में, मैं कह रहा हूँ गाया है, अच्छा अपनी वाणी में उन्होंने वाणी दी है, और इसका नाम है वन डे। ये शायद इसमें हो तो इसमें मैं निकाल लेता हूँ, नहीं तो पुस्तक से। इसका नाम है वन डे, एंड तक मिले कहीं, अदरवाइज आई टेक इट आउट ऑफ छोटे नारायण जी बुक। गॉड्स लेबर की बात तो नहीं होगी, ठीक है, आई थिंक आई टेक आउट ऑफ छोटे नारायण जी बुक, इसमें तो है वो निश्चित रूप से है, वन डे। एक दिन, हाँ वन डे। अब ये छोटा नारायण जी की किताब से मैं निकाल रहा हूँ, कलेक्टेड पोएम्स में ऑब्वियसली है, और माता जी ने इस पोएम को बड़ी पावरफुल वाणी दी है, रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल है। इसका ना इसमें नहीं है वो, मैं इसलिए छोटा नारायण जी की किताब से निकाल रहा हूँ, कलेक्टेड पोएम्स में तो है। वन डे द लिटिल मोर, तो ये थी ना कि पहले भी हुए प्रयास स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में उठने के, उठना पहला स्टेप है, रूपांतरण नहीं है। उठना इस तरह की चीज है कि आप गए फॉरेन कंट्री, गलत एग्जाम्पल है पर एग्जाम्पल के लिए, आप वहां से आ गए, थोड़े अपने तौर तरीके दिखावे के लिए अपनाए, थोड़े दिन बाद और आए, आपने उसकी भाषा बोलनी शुरू कर दी, पृष्ठ आ गया आपकी लैंग्वेज में, लेकिन आप वो नहीं हो वहां जिस मानसिकता से ये जो चीज की जा रही है, इट इज नॉट दैट। आप विदेश में जाते हैं, आप गले मिलते हैं बड़े उससे, स्पेन में मैं गया तो उन्होंने कहा हमारे यहां सब लोग एम्ब्रेस करते हैं, मैंने कहा हाँ मुझे पता है भाई इतने वर्षों से जा रहा हूं, उन्होंने कहा हमारे यहां सब नमस्ते करते हैं। अब कई लोग हैं जो वो तौर तरीका अपना लेते हैं लेकिन उनकी अंदर में ये चेंज नहीं आता है, दे आर वेरी अनकंफर्टेबल, हमारे यहाँ ये कंफर्ट जोन हमारा नहीं है, हमारा कंफर्ट जोन कुछ और है, ये नहीं कि यहाँ सही गलत की क्या बात है। तो उसी प्रकार से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में उठ के जो अनुभव होते हैं जब हम उनको दैनिक जीवन में ट्रांसलेट करते हैं तो ज़्यादातर हम मिस ट्रांसलेट करते हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब है, आओ सब आओ हम साथ मिलके हलवा पूड़ी खाएंगे, लेफ्ट लिबरल तो बोलेगा हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम उस चेतना की अवस्था है जिसमें आप वासुदेवम सर्वमिति देख रहे हो। अगर आप वो अनुभव नहीं कर रहे हो तो आप उस व्यक्ति की तरह हो जो इंग्लिश को बड़े ट्विस्ट करके बोल रहा है और वो समझ रहा है कि मैं बिल्कुल फॉरेन रिटर्न्ड हो गया, और आपको कहना पड़ता है भैया ठीक से बोल, तू भारतीय है मैं भी भारतीय हूँ, हम समझ लेंगे एक दूसरे की बात, तुझे टेढ़ा माढ़ा करके बोलने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन उनके लिए वो नेचुरल है, आप ब्रिटिशर्स को सुनेंगे फ शब्द, कुछ एक ब्रिटिशर्स हैं जो मतलब आप वो आधा लगेगा आपको स्ट्रेन करना पड़ेगा क्या कहा इसने, तो लेकिन हमारे लिए अलग है वो भाषा, हम अलग तरह से बोलते हैं। जब आप इमिटेट करोगे तो ये इमिटेशन स्पिरिचुअलिटी का है, वसुधैव कुटुंबकम, किसी को भी बुला लो हम खिला लें, तो आप अगर इसको मिसयूज, तो स्पिरिचुअलाइजेशन इज नॉट समथिंग एक्सटर्नल, वो एक इनर चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है जो बाहरी जीवन में आपके परिलक्षित होगा। वसुधैव कुटुंबकम आपको यह भी बताएगा रितचित हर चीज का कौन सा स्थान है, आपको सही कर्म की तरफ प्रेरित भी करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। वन डे द लिटिल मोर, वन डे एंड ऑल द हाफ डेड इज डन, इसका एक अल्टरनेट रीडिंग भी है, हाफ डीड इज डन। कुछ लोगों का कहना है हाफ डीड इज मोर करेक्ट, वैसे दोनों अप्लाई करती हैं, हाफ डीड जो आधा अधूरा था, साइकिक चेंज की ग्लिम्सेस, स्पिरिचुअल ग्लिम्सेस, ये आधा अधूरा काम है क्योंकि वो जीवन को नहीं बदलता है। वन डे एंड ऑल द अनबॉर्न बिगन, जो जन्म नहीं लिया है, सुप्रामेंटल डिविनाइज, वो जन्म लेना का मतलब है कि जो सीमा के दायरे में आ जाए, जन्म का ओरिजिनल अर्थ संभूति यही है, विद इन द लिमिट्स, ए लिटिल पाथ एंड द ग्रेट गोल, ए टच दैट ब्रिंग्स द डिवाइन होल, यह है सुप्रामेंटल टच, डिवाइन पूर्णता होल। हिल आफ्टर हिल वॉज क्लाइम्ड एंड नाउ Behold the last tremendous brow and the great rock that none has trod. वो अंतिम छलांग रॉक जहां से आप स्पेस में चले जाते हो, ए स्टेप एंड ऑल स्काई एंड गॉड, हिंदी में इसका रूपांतरण है छुटनारायण जी द्वारा, एक दिवस थोड़ा और अधिक, बस एक दिवस जो था अपूर्ण अब तक वह पूरा होगा, अटेम्प्ट्स हुए हैं अपूर्ण हुए हैं, बस एक दिवस जो जन्म ना अब तक पाया था जन्मेगा, प्रयास हुए हैं जितने भी स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हुए हैं, जेन्युइन की बात कर रहा हूं, सीयर्स, ये प्रकृति के एक एफर्ट थे मनुष्य को एक्सीड करने के, पर देखिए क्या हुआ, लोग उनको एबनॉर्मल क्योंकि नहीं समझ पाते थे उनके तौर तरीकों को, तो इट चेंजेस यू कंप्लीटली। है राह जरासी जाना है पार जहां लक्ष्य है बहुत महान, कर स्पर्श पूर्णता देव को लाकर पहुंचा देगा आन, एक टच दैट ब्रिंग्स द डिवाइन होल, शिखर शिखर को लांग यहां तक आज पहुंच हम पाए हैं, जितने भी एफर्ट्स हुए हैं उनको नमन है, उन्होंने चेतना के लिए कहीं ना कहीं काम किया यहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है, ये हमको याद रखना है। सबसे ऊंचा श्रृंग निरावृत यहां देख हम पाए हैं, है ऐसा अब तक ना आज तक जो इस पर हो चढ़ा कभी, पग एक बढ़े आंख के आगे, प्रभु हैं और है गगन सभी। तो सुपरामेंटल उस चीज को कंप्लीट करता है, पर आपको साइकिक और स्पिरिचुअल के एफर्ट्स हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के नहीं हुए, पर ओपनिंग हुई है, छाप भी पड़ी है, उससे आपको गुजरना है टुवर्ड दी सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिना उसके आप नहीं जा सकते। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आपको वाइड बनाती है, सीमित दायरे से निकालती है, ईगो से लिबरेट करती है, और साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन ईगो को रिजू बनाती है, नमनीय इंस्ट्रूमेंट बना देती है भगवान का प्रेम अंदर में लाती है, प्रकाश उनका हृदय के द्वार से लाती है। तो वी हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। आई थिंक हाउ टू कंट्रोल द ईगो ड्रिवन माइंड, बंदर नाच रहा है, जिस दिन वो अपने आप को मदारी के हाथ में सौंप देता है तो वो, अगर मदारी राम है तो हनुमान बन जाता है। माइंड को, ईगो ड्रिवन माइंड को भगवान की ओर मोड़ दीजिए, कैसे, उनके बारे में स्मरण करके, मनन करके, चिंतन करके, किसका, भगवान का, निस्वार्थ निष्काम भाव से कर्म करके, उनकी सेवा के भाव से करके, पूजा भाव से करके, पुण्य भाव से करके, भावनाओं में ईगो की जड़ों को, अपने से प्रेम, मेरे स्वजन की जगह भगवान से प्रेम और भगवान से सारी सृष्टि से प्रेम जुड़ करके, तो जैसे जैसे हम ऐसा करेंगे तब वही जो ईगो का बंदर है वो हनुमान बन जाएगा। यही डिफरेंस है। प्रश्न तो समाप्त हो गए हैं, पर है हमारे पास समय, वही अच्छा हुआ, मैं सोच रहा था कोई पोयम हम लोग पढ़ लें। ठीक है, ये तो अल्टीमेट है। रूपांतरण की विधि में एक पोयम है डिसेंट, इसमें डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, माँ की वो शक्ति सुपरमाइंड सुपरमेंटल ये उतरती है अंदर में और कैसे कैसे चेतना का रूपांतरण होता है, तो वह तो सारे चीजें हैं इसमें। देखूं मैं है कि नहीं है, हाँ इसमें नहीं, मैं देख रहा था इसमें है कि नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम श्री अरबिंदो लाइफ थ्रू हिज पोएम्स वी विल कम टू दैट। इसमें सारा है कैसे कैसे हमारी श्रवण की शक्ति, हमारी घ्राण शक्ति, हमारे चक्षु, ये सब रूपांतरित होंगे, सेंसेस का, नर्व्स का, ये सब विस्तार में माताजी ने बताया है। और दो डिवाइन सेंस, दो पोयम हम पढ़ लेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन और अंत करेंगे दी गोल्डन लाइट से। तो ट्रांसफॉर्मेशन पेज 46 पर है, 46 रूपांतरण, श्री अरविंद के योग का लक्ष्य, अब खुद ही पता चल जाएगा कि रूपांतरण जो है वो अब तक हुआ था कि नहीं हुआ था, आप पढ़िए पता चल जाएगा। माई ब्रेथ रन्स इन ए सटल रिदमिक स्ट्रीम, अब सहज प्राणायाम हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। उसने कौन सी रिद्म पकड़ी, वो रिद्म नहीं कि 4, 6, 8, वो रिद्म जिससे भगवान चलाएंगे। इट फिल्स माई मेंबर्स विद ए माइट डिवाइन, क्यों, ब्रेथ प्राण ऊर्जा लाती है, लेकिन कौन सी प्राण ऊर्जा, जो वातावरण से, अब प्राण ऊर्जा कौन सी आएगी, दिव्य शक्ति। आई हैव ड्रंक द इंफिनिट लाइक ए जायंट्स वाइन, उनके आनंद का कोई अंत नहीं, मेरी प्यास का कोई अंत नहीं, पिए जा रहा है इन्फिनिट लाइक ए जायंट्स वाइन। ये नहीं कि अब बस करो प्रभु, आनंद कंटेन नहीं हो रहा, उछलने की जरूरत पड़ रही है, नाचने की जरूरत पड़ रही है। शेरिन को देखिए, आनंद से भरे हुए शांत बैठे हैं, वो आनंद जो समा सके, ये मतलब है ड्रंक लाइक ए जायंट्स वाइन। टाइम इज माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम, ये सारा जो खेल चारों तरफ हो रहा है, मैं जान गया हूं कि इसका रचयिता मैं ही हूं, कोई और नहीं है, किसी को दोष नहीं देने की जरूरत है। माई सोल हैज चोजन फॉर दिस एंग्विश, फॉर दिस डेंजर, फॉर दिस डिफिकल्टी। टाइम इज माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम, पेजेंट कलरफुल ड्रीम, नाना प्रकार के विविध अवस्थाओं से। नाउ आर माई इल्यूमाइंड सेल्स जॉयस फ्लेमिंग स्कीम, कण कण में मेरी एक एक कोशिका के अंदर वो प्रकाशवान हो गई है। एंड चेंज्ड माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फायर, एंड चेंज्ड माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फाइन चैनल्स ऑफ रैप्चर ओपल एंड हाईलाइन। मेरी नस नस नर्व्स, क्या कहते हैं उसका एग्जैक्ट वर्ड, नस इज नॉट द राइट वर्ड, नाड़ी, हाँ नाड़ी, नाड़ी इज द करेक्ट वर्ड, शिराओं में, नाड़ी में, मेरी नाड़ियां, धमनी तो आर्टरीज हो गई, जो मेरी नाड़ियां शिराएं, इसमें अब क्या बह रहा है, भगवान का आनंद, जिधर भी देख रहा हूं, जिसको देख रहा हूं, वो रैप्चर फ्लो कर रहा है। फॉर द इनफ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम, कौन बह रहा है अब इनके उसमें, भगवान। इट्स नॉट ईजी, ब्रेक डाउन हो जाती है चीजें। आई एम नो मोर ए वसाल ऑफ द फ्लैश, मैं दास नहीं हूं, मैं मेरे शरीर का दास नहीं हूं कि शरीर के हिसाब से मेरे अंदर ही सेड आई एम ईगोलेस फ्री देन सोर बिकॉज ऑफ डिनर इज नॉट रेडी, मैं उसका दास नहीं हूं। ए स्लेव टू नेचर एंड हर लीड एंड रूल, कि ये नियम है, ये कानून है जिसे प्रकृति बंधी है, मैं उससे फ्री हो चुका हूं। आई एम कॉट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मेश, जो आंखों से देख रहा हूं वही सच है, जो सुन रहा हूं वही सच है, बिल्कुल नहीं। आंखें तो जो नहीं दिखाती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मंतव्य, कान जो नहीं सुनाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भगवान जो कहना चाह रहे हैं। I am caught no more in the senses narrow mesh. My soul, unhorizoned widens to measureless sight. और मेरा जो psychic being है अब वो universalize हो गया है, सारे विश्व विराट ब्रह्मांड में फैल गया है। My body is God's happy living tool. भगवान के यंत्र तो सभी हैं, लेकिन अब ये प्रसन्न है, भगवान इससे जब सेवा लेते हैं इसको यंत्र, तो इसमें बड़ा आनंद आता है। लिविंग, जीवित, जीवंत, ये नहीं कि ठीक है कर लो भगवान हमसे काम। माई बॉडी इज गॉड्स लिविंग हैप्पी लिविंग टूल, माई स्पिरिट ए वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट, द गोल्डन लाइट। इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे, फिर वील नॉट टेक एनी क्वेश्चंस, वील जस्ट द गोल्डन लाइट, दाई गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय ब्रेन एंड द ग्रे रूम्स ऑफ माइंड सन टस्ट बिकेम a bright reply to wisdom's occult plane, a calm illumination and a flame. भगवान की प्रज्ञा से थिरक रही है मेरे ब्रेन की सेल्स। Thy golden light came down into my throat. And all my speech is now a tune divine. Jo kaha wo ved. Ye arth hai. A pain song of thee, my single note. Bahut kuch keh raha hun. Lekin vastav mein wo Bhagwan ka gaan hi hai. A pain song of thee, my single note. My words are drunk with the immortal's wine. Aur ye jo shabd hai, ab shabd nahi rahe. क्योंकि वो उनमें आनंद का स्पर्श है. वो स्वयं को भी आनंद देते हैं और सबको आनंद देते हैं, क्योंकि वो आनंद को सारे संसार में कैरी कर रहे हैं. Thy golden light came down into my heart, smiting my life with thy eternity. सब सीमाओं से परे. अब जीवन वो सीमित नहीं है, असीम अनंत में प्रवेश कर गया. Now has it grown a temple where thou art, and all its passions point towards only thee. Jitne bhi mere karma hai, jitni bhi urjaye, pran ke andar tarange, wo sab tumhari ori ja rahi hai. Thy golden light came down into my feet. My earth is now thy playfield and thy seat. मंदिर बन गया मनुष्य, उसकी देह भगवान की क्रीड़ा स्थली बन गई, उनका सीट आसन बन गई. अब और क्या चाहिए. द गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय ब्रेन एंड द ग्रे रूम्स ऑफ माइंड सन टस्ट बिकेम ए ब्राइट रिप्लाई टू विजडम्स ऑकल्ट प्लेन ए काम इल्यूमिनेशन and a flame. Thy golden light came down into my throat, and all my speech is now a tune divine. A pain song of thee, my single note. My words are drunk with the immortal's wine. Thy golden light came down into my heart, smiting my life with thy eternity. Now has it grown a temple where thou art, and all its passions point towards only thee. Thy golden light came down into my feet. My earth is now thy playfield and thy seat. Ma.